एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
आज हम गोता लगा रहे हैं इतिहास के एक ऐसे समंदर में जिसने एक द्वीप के बिखरे हुए कबीलों को एक पहचान दी, मतलब एक राष्ट्र की बुनियाद रखी।
हाँ जी,
हम बात कर रहे हैं आदरणीय बीड की लिखी करीब 1300 साल पुरानी किताब The Ecclesiastical History of the English People,
अंग्रेजी लोगों का धार्मिक इतिहास।
हाँ वही
बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई पुरानी धूल खादी किताब नहीं है, ये समझने की एक कुंजी है कि कैसे कोई साझा विश्वास या नेतृत्व और एक कहानी, एक नैरेटिव जिसे कहते हैं, वो मिलकर लोगों को जोड़ सकते हैं।
सही बात है।
आज जब हम पहचान की राजनीति और सांस्कृतिक टकराव दुनिया भर में देखते हैं, तब 8वीं सदी के इंग्लैंड की ये कहानी ये हमें बहुत कुछ सिखा सकती है कि कैसे आस्था, राजनीति और संस्कृति मिलकर किसी पहचान को गढ़ते हैं।
एकदम सही। तो ये कहानी सिर्फ राजाओं और संतों की नहीं है, बल्कि एक तरह से एक राष्ट्र के जन्म की कहानी है।
हाँ बिल्कुल।
तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि बीड ने ये इतिहास क्यों और कैसे लिखा, और इसका असली मकसद, मतलब उनका रोल और गोल क्या था।
चले पहले लेखक की ही बात करते हैं, आदरणीय बीड। इन्हें यूं ही नहीं अंग्रेजी इतिहास का पिता कहा जाता।
हाँ,
इनका जीवन काल था लगभग 673 से 735 ईस्वी। ये नॉर्थम्ब्रिया, मतलब आज का जो उत्तरी इंग्लैंड और दक्षिणी स्कॉटलैंड का इलाका है, वहाँ मॉन्कियर माउथ जेरो नाम के मठ में एक बेनेडिक्टन भिक्षु थे।
और कमाल की बात यह है, जैसा आपने कहा, कि उन्होंने लगभग अपनी पूरी जिंदगी उसी एक मठ में गुजार दी।
हाँ सोचिए।
लेकिन वहीं रहकर उन्होंने उस जमाने की यूरोप की शायद सबसे बेहतरीन लाइब्रेरियों में से एक का इस्तेमाल किया। रोम से, आयरलैंड से, फ्रांस से पांडुलिपियां मंगवाई गईं।
बिल्कुल।
एक जगह टिक कर दुनिया भर का ज्ञान समेट लेना, ये अपने आप में बड़ी बात है।
हाँ, और वो सिर्फ इतिहासकार नहीं थे, ये भी जानना जरूरी है, उन्होंने 40 से ज्यादा किताबें लिखी।
40?
हाँ, बाइबल की टीकाएं, संतों की जीवनियां, यहाँ तक के खगोल विज्ञान पर भी लिखा।
अच्छा।
लेकिन इतिहास लिखने में उनका जो तरीका था वो गजब का था। उस जमाने के हिसाब से तो क्रांतिकारी कह सकते हैं। वो अपने स्रोतों का बाकायदा हवाला देते थे,
मतलब बताते थे कि जानकारी कहां से मिली।
बिल्कुल। लिखित दस्तावेज, रोम से आए हुए पत्र या फिर भरोसेमंद लोगों की गवाही, ये उस दौर में बहुत बहुत नई बात थी।
और सबसे अहम बात शायद ये जो आपने शुरू में इशारा किया कि उनका इतिहास लिखने का एक स्पष्ट मकसद था, एक लक्ष्य था।
हाँ,
वो सिर्फ गुजरी घटनाओं को दर्ज नहीं कर रहे थे, उनका एक रोल था। वो नवगठित अंग्रेजी चर्च और लोगों को एक नैतिक दिशा देना चाहते थे।
बिल्कुल। उन्हें ये एहसास दिलाना कि वो बड़े रोमन ईसाई जगत का एक अहम हिस्सा है, वो एक पहचान गढ़ रहे थे अंग्रेजी लोगों की, जेंस एंग्लोरम की, ईसाई पहचान।
तो उनके लिए ये सिर्फ लेखन नहीं, एक मिशन था।
बिल्कुल, एक मिशन था।
तो फिर ये किताब है किस बारे में? जैसा नाम से लगता है ये चर्च का इतिहास तो है ही।
हाँ, लेकिन उससे कहीं ज्यादा है। ये इंग्लैंड के धार्मिक और राजनैतिक कायापलट की एक पूरी महागाथा है। जूलियस सीजर के ब्रिटेन आने से, मतलब 55 ईसा पूर्व से लेकर बीड के अपने समय 731 ईस्वी तक,
काफी लंबा अरसा है।
बहुत लंबा। और इसका जो केंद्रीय तर्क है, या कह लीजिए मूल विचार, वो ये है कि जो अलग अलग एंग्लो सैक्सन कबीले थे, बुतपरस कबीले, उनका ईसाई धर्म अपनाना, खासकर रोमन परंपरा वाला ईसाई धर्म, ये कोई इत्तेफाक नहीं था।
अच्छा।
बीड के नजरिए से ये ईश्वर की योजना थी, एक दैवीय विधान। उनका मानना था कि ईश्वर चाहता था कि ये लोग ईसाई बने, एक हों और एक अंग्रेजी राष्ट्र बने। तो ये किताब एक तरह से ईश्वर की इस योजना को साबित करने की कोशिश भी है।
दिलचस्प।
तो ये हमें एक लंबे सफर पर ले जाती है। शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है रोमन ब्रिटेन में ईसाई धर्म की जो हल्की फुल्की जड़ें थी उनसे, जैसे सेंट अल्बन की शहादत का जिक्र है। फिर वो दौर आता है जब रोमन फौजें चली गईं।
हाँ, ब्रिटेन असुरक्षित हो गया।
बिल्कुल। और फिर बाहर से एंगल्स, सैक्सन्स, जूट्स जैसे मूर्ति पूजा कबीलों ने हमला किया, कब्जा किया। बीट का मानना था कि ये मूल ब्रितानी लोगों के पापों की सजा थी।
ओ, तो ब्रिटेन फिर से अंधेरे में डूब गया।
हाँ, कह सकते हैं। इंग्लैंड का बड़ा हिस्सा फिर से बुतपरस्ती में, पुराने देवी देवताओं की पूजा में डूब गया।
और फिर कहानी में मोड़ आता है ईसाई धर्म की वापसी।
बिल्कुल, पहले पोप ग्रेगरी का मिशन आता है, ऑगस्टाइन केंट पहुंचते हैं, फिर उत्तर में आयरलैंड से आए मिशनरियों का काम, और फिर इन दो अलग अलग ईसाई परंपराओं, रोमन और सेल्टिक का टकराव।
हाँ, विडबी वाली सभा।
हाँ, विडबी की धर्म सभा, और उसमें रोमन तरीके की जीत, और आखिर में एक संगठित अंग्रेजी चर्च का उभरना। तो ये इतिहास भी है, धर्मोपदेश भी है, और ईश्वरीय योजना का एक तर्क भी है, सब मिला जुला है।
चलिए अब कुछ मुख्य घटनाओं को थोड़ा और करीब से देखते हैं। आपने कहा रोमन ब्रिटेन की ईसाई विरासत से शुरुआत होती है।
हाँ, फिर रोमन साम्राज्य का पतन, ब्रिटेन का कमजोर पड़ना और एंग्लो सैक्सन आक्रमण। बीट के लिए ये एक अंधकार का दौर था, जब ब्रिटेन का बड़ा हिस्सा फिर से बुतपरस्ती में चला गया।
और फिर रोशनी आती है पोप ग्रिगोरी महान के साथ, वो रोम के बाजार वाला किस्सा।
हाँ, वो मशहूर किस्सा कि उन्होंने रोम के बाजार में कुछ गोरे सुनहरे बालों वाले गुलाम लड़के देखे, पूछा ये कौन है, बताया गया एंगल है।
एंगल,
तो कहते पोप ने कहा नॉट एंजल्स बट एंजल्स, मतलब ये एंगल नहीं, ये तो देवदूत एंजल जैसे हैं। अब ये बात सच हो या कहानी, इसने एक शक्तिशाली संदेश जरूर दिया। पोप ने तय किया कि इन लोगों तक ईसाई धर्म पहुंचाना है, ये उनका एक तरह से मिशन बन गया।
और इसी मकसद से 597 ईस्वी में उन्होंने ऑगस्टाइन को भेजा।
हाँ, ऑगस्टाइन नाम के भिक्षुक को मिशनरियों के एक दल के साथ केंट भेजा। अब केंट के राजा थे एथिलबर्ट, उनकी रानी बर्था, वो पहले से ईसाई थी, फ्रांस की राजकुमारी थी वो।
अच्छा, तो जमीन पहले से थोड़ी तैयार थी।
थोड़ी सी हाँ, राजा ने मिशनरियों का स्वागत किया, उन्हें रहने की जगह दी, और कुछ समय बाद खुद भी ईसाई बन गए।
और कैंटरबरी में चर्च की स्थापना हुई।
बिल्कुल, कैंटरबरी में पहला बड़ा चर्च स्थापित हुआ, जो आज भी इंग्लैंड के चर्च का केंद्र है। तो इस तरह दक्षिण इंग्लैंड में रोमन ईसाई धर्म की नींव पड़ गई।
लेकिन कहानी सिर्फ दक्षिण तक ही सीमित नहीं थी, है ना, उत्तर में भी कुछ चल रहा था।
बिल्कुल, उत्तर में नॉर्थम्ब्रिया एक शक्तिशाली राज्य था।
हाँ, वहाँ राजा एडविन का ईसाई बनना एक बड़ी घटना मानी जाती है।
बहुत बड़ी, उनकी रानी भी केंट की ईसाई राजकुमारी थी एथिलबर्ट, और उनके साथ पॉलिनस नाम के बिशप आए थे। बीड यहीं पर उस मशहूर गौरैया रूपक का जिक्र करते हैं।
हाँ हाँ, वो बड़ा काव्यात्मक है,
है ना। जब राजा एडविन अपने सरदारों से सलाह ले रहे थे कि ये नया धर्म अपनाए या नहीं, तो एक सरदार ने कहा।
क्या कहा?
उन्होंने कहा, महाराज, इंसान की जिंदगी इस धरती पर ऐसी है जैसे सर्दियों की रात में आप महल के गर्म हॉल में दावत कर रहे हो, आग जल रही हो, और बाहर तेज आंधी तूफान चल रहा हो। तभी छोटी सी गौरैया एक दरवाजे से अंदर आती है, पल भर के लिए रोशनी और गर्मी में फुर से उड़ती है, और दूसरे दरवाजे से निकलकर फिर उसी अंधेरे तूफान में खो जाती है।
वाह,
हम भी बस इतनी ही देर के लिए यहाँ हैं, हमें नहीं पता कि इससे पहले क्या था और इसके बाद क्या होगा। अगर ये नया धर्म हमें इस बारे में कुछ पक्का बता सकता है, तो हमें इसे जरूर अपनाना चाहिए।
क्या गहरी बात है, जीवन की क्षणभंगुरता।
बिल्कुल, और इसी से प्रभावित होकर एडविन ने 627 ईस्वी में ईसाई धर्म अपना लिया।
लेकिन ये कामयाबी ज्यादा टिकी नहीं शायद।
नहीं, ज्यादा नहीं। 633 ईस्वी में राजा एडविन एक लड़ाई में मारे गए। नॉर्थम्ब्रिया में फिर से अफरातफरी मच गई, लोग पुराने धर्म की तरफ लौटने लगे, पॉलिनस को तो भागना पड़ा।
ओह, तो फिर क्या हुआ?
यहीं पर कहानी में दूसरा ईसाई प्रभाव आता है, सेल्टिक चर्च का। ये आयरलैंड से जुड़ा था।
अच्छा, आयरलैंड से।
हाँ, नॉर्थम्ब्रिया के एक निर्वासित राजकुमार थे ओसवाल्ड, उन्होंने आयोना के आयरिश मठ में शरण ली थी और वहीं ईसाई बन गए थे। जब वो वापस आए और राजा बने, तो उन्होंने आयरिश भिक्षुओं को बुलाया।
और इनमें सबसे मशहूर थे सेंट एडन।
हाँ जी, सेंट एडन, जिन्होंने लिंडिसफान द्वीप पर एक मठ स्थापित किया। ये जो सेल्टिक ईसाई परंपरा थी, ये थोड़ी अलग थी रोमन से।
कैसे अलग थी?
ये ज्यादा तपस्वी थी, कम औपचारिक थी, मठों पर ज्यादा जोर था। बीड खुद रोमन परंपरा के समर्थक थे, लेकिन वो इन आयरिश मिशनरियों की सादगी और पवित्रता की बहुत तारीफ करते हैं। पर वो ये भी साफ साफ बताते हैं कि इनकी कुछ प्रथाएं, जैसे ईस्टर मनाने की तारीख और सिर मुंडाने का तरीका, जिसे टॉन्सोर कहते हैं, वो रोम से अलग थीं।
तो अब इंग्लैंड में एक ही धर्म की दो अलग अलग धाराएं बह रही थी, रोमन और सेल्टिक।
बिल्कुल, और इसी से टकराव पैदा हुआ। सबसे बड़ा मुद्दा बन गया ईस्टर की तारीख का।
ईस्टर की तारीख,
हाँ, सोचिए, एक ही शाही दरबार में राजा जो सेल्टिक तरीका मानते थे ईस्टर मना रहे हैं, और रानी जो रोमन तरीका मानती थी अभी 40 दिन के उपवास यानी लेंट ही रख रही हैं।
अरे, ये तो बड़ी गड़बड़ थी प्रशासनिक तौर पर भी।
हाँ, बहुत गड़बड़ थी। तो इसे सुलझाने के लिए 664 ईस्वी में विटबी में एक बड़ी सभा बुलाई गई, सिनोड ऑफ विटबी।
विटबी की धर्मसभा।
हाँ, इसकी मेजबानी की वहां की बहुत प्रभावशाली मठाध्यक्षा एबेस हिल्डा ने।
और इसमें क्या हुआ?
इसमें सेल्टिक पक्ष के नेता थे बिशप कोलमैन और रोमन पक्ष के मुख्य वक्ता थे विल्फ्रेड। बहस हुई कि किसकी परंपरा ज्यादा पुरानी और ज्यादा सही है, आयरिश संतों की या सेंट पीटर की।
सेंट पीटर, जिन्हें ईसा मसीह ने स्वर्ग की चाबियां सौंपी थी।
बिल्कुल, आखिर में राजा ओजव्यू ने जो सभा की अध्यक्षता कर रहे थे दोनों पक्षों से पूछा, क्या तुम दोनों मानते हो कि स्वर्ग की चाबियां पीटर को दी गई थीं?
दोनों ने क्या कहा?
दोनों ने कहा हाँ मानते हैं। तब राजा ने फैसला सुनाया।
क्या फैसला?
उन्होंने कहा, तो फिर मैं स्वर्ग के द्वारपाल का कहां मानूंगा? मैं उनके नियमों का पालन करूंगा, कहीं ऐसा न हो कि जब मैं स्वर्ग पहुंचूं तो वो मेरे लिए दरवाजा ही न खोले।
बड़ा व्यावहारिक तर्क था।
बिल्कुल, एक निर्णायक पल था ये। राजा ने व्यावहारिक रूप से एकता और व्यवस्था को चुना। इंग्लैंड के चर्च ने रोमन परंपरा और पोप के अधिकार को स्वीकार कर लिया।
और जो सेल्टिक मिशनरी सहमत नहीं थे
वो वापस चले गए। तो ये बीट के लक्ष्य अंग्रेजी चर्च को रोम से जोड़ने की दिशा में एक बहुत बड़ी जीत थी। इसने चर्च में एकता का रास्ता साफ कर दिया।
अच्छा, तो विटबी के बाद चीजें व्यवस्थित होने लगी।
हाँ, तेजी से। टार्सस के थियोडोर, जो यूनान के एक बड़े विद्वान थे, उन्हें कैंटरबरी का आर्क बिशप बना के भेजा गया।
टार्सस के थियोडोर,
हाँ, उन्होंने पूरे इंग्लैंड का दौरा किया, चर्च के सूबे मतलब डायोसीज बनाए, नियम कानून लागू किए और शिक्षा को बहुत बढ़ावा दिया। उनके समय को अंग्रेजी चर्च का स्वर्ण युग भी कहा जाता है।
स्वर्ण युग?
बिल्कुल, इसी दौर में सेंट कथबर्ट जैसे संत हुए जिनमें सेल्टिक पवित्रता और रोमन अनुशासन का एक तरह से मेल दिखता था। बीड ने उनका जीवन भी बड़े विस्तार से लिखा है। और अंग्रेजी चर्च अब इतना मजबूत हो गया था कि वो खुद यूरोप के दूसरे हिस्सों में मिशनरी भेजने लगा, जैसे विलिब्रॉड, जिन्होंने जर्मनी और नीदरलैंड्स में धर्म प्रचार किया।
अच्छा, मतलब अब इंग्लैंड धर्म ले नहीं रहा था, दे रहा था।
हाँ, एक तरह से।
तो इस तरह बीड अपनी कहानी को अपने समय यानी 731 ईस्वी तक लाते हैं, जब अंग्रेजी चर्च एक ताकतवर, संगठित और रोम से जुड़ा हुआ बन चुका था। उनका मिशन पूरा हुआ दिखता है।
जबरदस्त कहानी है। तो इस पूरी गाथा से कुछ बड़े संदेश या थीम्स क्या निकलते हैं? पहला तो शायद वही जो आपने शुरू में कहा।
हाँ, ईश्वर की योजना में विश्वास, डिवाइन प्रोविडेंस। बीड के लिए इतिहास सिर्फ घटनाओं का लेखा जोखा नहीं है, ये ईश्वर की मर्जी का इजहार है। जीत, हार, चमत्कार, मुसीबतें, सब उसी बड़ी योजना का हिस्सा है।
और इस योजना का मकसद
अंग्रेजी लोगों को ईसाई बनाना और उनका उद्धार करना। ये नजरिया ही उनके इतिहासकार के रोल को, उनके उद्देश्य को परिभाषित करता है।
अच्छा, और दूसरा संदेश?
दूसरा है एकता की ताकत, खासतौर पर रोमन चर्च के साथ एकता। बीट बार बार दिखाते हैं कि सेल्टिक और रोमन तरीकों के बीच का जो झगड़ा था वो चर्च को कमजोर कर रहा था।
विटबी का फैसला एकता लाया जिससे शांति और तरक्की हुई। ये दिखाता है कि कैसे एक साझा विश्वास और एक केंद्रीय सत्ता, शेयर्ड बिलीफ एंड अथॉरिटी, अलग अलग कबीलों को एक पहचान, जेंस एंग्लोरूम, दे सकती है।
ये तो आज भी प्रासंगिक है। किसी भी समाज या संगठन को जोड़ने के लिए साझा मूल्य कितने जरूरी होते हैं।
बिल्कुल। तीसरा थीम है आदर्श ईसाई राजा का तसव्वुर और नेतृत्व की भूमिका।
हाँ, ये भी बार बार आता है।
बीज जोर देकर कहते हैं कि जो राजा चर्च का साथ देते हैं, ईश्वर की बात मानते हैं, वो कामयाब होते हैं, उनके राज में अमन रहता है। एडविन, ऑसवाल्ड, ये मिसालें हैं।
और जो नहीं मानते,
जो राजा पुराने रिवाजों की तरफ लौटते हैं या चर्च की नहीं सुनते, उनका हश्र बुरा होता है। ये उस जमाने में धर्म और सियासत के गहरे रिश्ते को दिखाता है, और ये भी कि नेताओं के फैसलों का समाज पर कितना असर पड़ता है।
बिल्कुल। और चौथा?
चौथा मठ और शिक्षा का सभ्यता के इंजन के रूप में महत्व। बीड खुद एक मठवासी विद्वान थे तो वो ये बात बखूबी दिखाते हैं कि कैसे मठ ज्ञान और संस्कृति के केंद्र थे,
ज्ञान के द्वीप जैसे।
हाँ, कह सकते हैं उस उथल पुथल भरे दौर में मठों ने ही पुरानी किताबों को सहेजा, उनकी नकलें बनाई और आने वाली पीढ़ियों के लिए शिक्षा का इंतजाम किया। ये आज भी हमें याद दिलाता है कि शिक्षा और संस्थान समाज को स्थिरता और प्रगति देने में कितनी अहम भूमिका निभाते हैं।
सही बात है। बीट की किताब में कुछ ऐसी बातें हैं जो दिमाग में अटक जाती हैं। वो बोरैया वाला रूपक तो है ही।
हाँ, वो तो अद्भुत है। हॉल में उड़ती गौरैया, जिंदगी कितनी छोटी और अनिश्चित है और मौत के बाद क्या है, ये सवाल आज भी हमें परेशान करते हैं।
बिल्कुल।
ये रूपक इंसान की इसी गहरी चिंता को और धर्म कैसे इन सवालों का जवाब देने की कोशिश करता है, इसे बड़ी खूबसूरती से दिखाता है।
और पोप ग्रेगरी का वो जुमला, नॉट एंजल्स बट एंजल्स।
हाँ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहानी चाहे जितनी सच हो, इसने एक जबरदस्त नैरेटिव तैयार किया। कैसे? इसने अंग्रेजी लोगों को एक तरह से चुना हुआ बना दिया और रोमन मिशन को एक दिव्य मकसद दिया। ये दिखाता है कि कैसे एक शक्तिशाली कहानी, एक मिथक, किसी बड़े आंदोलन या बदलाव की नींव रख सकता है। उस कहानी का रोल बहुत बड़ा था।
और विटबी में राजा का फैसला।
हाँ, राजा ऑस्व्यू का फैसला, सेंट पीटर के अधिकार को चुनना, ये बड़ा व्यवहारिक फैसला था जैसा आपने कहा।
हाँ।
ये दिखाता है कि कभी कभी एकता, स्पष्टता और व्यवस्था की जरूरत सैद्धांतिक बहस से ज्यादा भारी पड़ती है। इस फैसले ने अंग्रेजी चर्च को एक मजबूत एकीकृत दिशा दी, जो शायद बीट के हिसाब से उस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत थी।
तो ये 1300 साल पुरानी कहानी आज हमारे किस काम की है? आज के जीवन में इसका क्या मतलब है?
मुझे लगता है पहला सबक तो है एकजुट करने वाली कहानी की शक्ति, पावर ऑफ अ यूनिफाइंग नैरेटिव। बीट ने सिर्फ तारीखें और घटनाएं नहीं लिखी, उन्होंने एक ऐसी कहानी बुनी जिसने अलग अलग कबीलों को एक साझा पहचान दी, हम अंग्रेज लोग।
हाँ।
आज भी तो यही होता है। देश हो, कंपनियां हो या कोई समुदाय, सब अपनी कहानियों से ही तो जुड़े होते हैं। ये कहानियां हमें बताती हैं कि हम कौन हैं, हमारा साझा अतीत क्या है और हमें किधर जाना है।
सही का। और दूसरा,
सांस्कृतिक टकराव और बदलाव का प्रबंधन, कल्चरल इंटीग्रेशन एंड चेंज मैनेजमेंट। रोमन और सेल्टिक परंपराओं का मिलना, उनका टकराव और फिर एक का हावी होना, ये दिखाता है कि कैसे नए विचार या नई संस्कृतियां समाज में आती हैं और कैसे उनके बीच तालमेल बिठाया जाता है या टकराव होता है। विटबी का फैसला एक तरह का चेंज मैनेजमेंट ही तो था।
हाँ, कह सकते हैं।
इसमें उसूलों पर अड़े रहने और व्यवहारिक जरूरतों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश दिखती है। ये आज भी प्रासंगिक है, चाहे वो वैश्वीकरण की बात हो या किसी कंपनी में होने वाले बड़े बदलावों की।
बिल्कुल। तीसरा,
नेतृत्व के सबक, लीडरशिप लेसन्स। राजाओं का असर, पोप ग्रेगरी की दूरदर्शिता, ऑगस्टाइन का मिशन पर निकल पड़ना और आर्क बिशॉप थियोडोर की संगठनात्मक काबिलियत, ये सब क्या दिखाते? यही कि किसी बड़े बदलाव के लिए सिर्फ सपना देखना काफी नहीं होता, उसे जमीन पर उतारने का हुनर और व्यवस्था भी चाहिए। सफल नेताओं ने न सिर्फ दिशा दिखाई बल्कि उसे पाने के लिए जरूरी ढांचा भी खड़ा किया। विजन और एग्जीक्यूशन दोनों जरूरी हैं।
विजन और एग्जीक्यूशन।
बिल्कुल।
और आखिर में
अपना इतिहास खुद लिखने का महत्व,
इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग योर ओन हिस्ट्री।
मतलब ये कि बीड ने इतिहास को एक खास नजरिए से लिखा, रोमन चर्च की जीत और अंग्रेजी लोगों के एक होने की कहानी,
और उनकी लिखी कहानी ने सदियों तक इंग्लैंड की पहचान को गढ़ा।
हाँ, ये तो है। ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास हमेशा किसी न किसी नजरिए से लिखा जाता है। इतिहास कभी भी पूरी तरह ऑब्जेक्टिव नहीं होता। हमें हमेशा सोचना चाहिए कि कहानी कौन सुना रहा है, क्यों सुना रहा है और क्या छोड़ रहा है।
बिल्कुल। इतिहासकार का रोल सिर्फ बताना नहीं, चुनना और व्याख्या करना भी है।
हाँ जी।
मेरे लिए इस पूरी बातचीत में सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि बीड ने आज से 1300 साल पहले भी सबूतों और स्रोतों का हवाला देने पर इतना जोर दिया। वो चाहते थे कि लोग उनकी बात पर यकीन करें। ये उनकी बौद्धिक ईमानदारी दिखाता है।
हाँ, ये वाकई काबिले तारीफ है। और मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि कैसे एक विचार, एक विश्वास, जब उसे मजबूत संस्थाओं जैसे चर्च या मठ और एक असरदार कहानी का साथ मिलता है, तो वो लोगों को किसी भी राजनीतिक या नस्ली पहचान से ज्यादा मजबूती से जोड़ सकता है।
बीड दिखाते हैं कि ईसाई धर्म ने सचमुच अलग अलग कबीलों को पिघलाकर एक राष्ट्र, एक जेंस बनाया। ये विचारों की ताकत का एक क्लासिक उदाहरण है। तो बीड का रोल सिर्फ इतिहासकार का नहीं था, एक तरह से राष्ट्र निर्माता का भी था अपने नजरिए से।
बहुत खूब। तो आज के लिए एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं।
जरूर।
बीड जैसी फाउंडेशनल नैरेटिव्स, वो कहानियां जो किसी समूह की शुरुआत, मकसद और पहचान बताती हैं, आज भी हमारी सोच को कैसे प्रभावित करती हैं, भले ही हम उन कहानियों का असली मतलब या संदर्भ भूल चुके हों।
और ये भी कि जब अलग अलग समूहों की ऐसी मौलिक कहानियां टकराती हैं, जैसे उस समय सेल्टिक और रोमन परंपराओं की टकराई थीं, तो क्या होता है, इस पर सोचने जैसा है।
बिल्कुल। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।